संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, इसमें ज्ञानाधिकार की गाथाएं चल रही हैं। इसमें 35वीं और 36वीं गाथा में अपन ने अभी तक विस्तार से चर्चा की, और आज अरे 37वीं गाथा की चर्चा अपन करने जा रहे हैं। सैतीसवीं, 38वीं और 39वीं ये तीन गाथाएं का एक तरह से ग्रुप है, और जो केवल ज्ञान में ये पर्यायें किस प्रकार झलकती हैं, जानने में आती हैं, उसका इसमें बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया गया है। अभी अपने पास मेरे ख्याल से 4-5 दिन हैं, आज के तारीख है 8, 9, 10, 11 4 दिन हैं, तो इन पर अपन ये तीन गाथाएं इन 4 दिन में अपन पूरी करने की कोशिश करेंगे। गाथाएं तो ऐसी हैं कि जो कभी पूरी ना हो, और जिसके जीवन में पूरी हो जाए वो निहाल हो जाएगा। असद्भूत हो सद्भूत हो, सद द्रव्य की पर्याय सब, सद ज्ञान में वर्तमान बत ही है सदा वर्तमान सब। देखो ना, ऊपर प्राकृत भाषा में भी है ना, तत्कालिमेव सब्बे सद असद भूदा ही पज्जाया। क्या जो सद असद भूदा एक शब्द है ना, मन सद्भूत पर्याय और असद्भूत पर्याय, अनादि काल से और एक समय पहले तक जो पर्याय हो गई हैं उनको यहां पर असद्भूत कहा जा रहा है, और एक समय बाद से अनंत काल तक जो पर्याय होंगी उनको भी असद्भूत कहा जा रहा है, और सर्व वर्तमान की एक समय की पर्याय है वो सद्भूत है, वो है। मतलब पर्याय दृष्टि से तीन काल की पर्यायों के अखंड पिंड को द्रव्य कहते हैं, और उस द्रव्य को हम अनादि अनंत कहते हैं ना। अब हम ये कहें कि वो जो पर्याय हैं जिन्हें हम असद्भूत कह रहे हैं, ये आगे की गाथाओं में नष्ट हो गई हैं, ऐसा भी लिखा है, अनुत्पन्न और नष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। जो नष्ट हो गई हैं वे भूतकालीन पर्याय, और जो अभी पैदा नहीं हुई हैं वे अनुत्पन्न, ये भविष्यकालीन पर्याय। वो कहते हैं ये पर्याय यद्यपि असद्भूत हैं तथापि केवली भगवान के ज्ञान में वर्तमान पर्याय के समान ही सद्भूत हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं? केवल ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं कि हमको ऐसा देखने में आता है स्वयं का अनुभव से सबको, कि आज की बात हमें एकदम बिल्कुल ताजा है, और कल की भी याद है लेकिन कुछ फीकापन आ गया है, और परसों की तो ऐसे पीछे पीछे जाते हैं। तो मान लो पहले दिन से जो आपने सुना है उसकी भी कुछ याद हो, लेकिन जो अगली साल पहले सुना था वो तो सब साफ है ना, इतना भी नहीं पता है कि कौन सी गाथा चली थी, क्या विषय चला था, हमें ये भी पता नहीं है। तो ऐसा ही केवली भगवान को भी होता होगा, तो बहुत पुरानी बातें भूल गए होंगे, और दिखती होंगी तो थोड़ी फीकी फीकी दिखती होंगी, और हम यहाँ से देखते हैं तो जो सामने की पहाड़ी है उस पर जो पेड़ पौधे हैं वो बराबर एक गुलदस्ता जैसे दिखते हैं क्या, छोटे छोटे दिखते हैं, और वहां जाओ तो कितने बड़े विशाल वृक्ष हैं। जो जो दूर चले जाओ छोटे, माने क्षेत्र और काल इन दोनों की अपेक्षा हमारे ज्ञान में स्थूलता माने वो आती जाती है। तो ऐसा ही हम ज्ञान का स्वरूप हमको ऐसा ही लगता है, अनुभव से लगता है ना ज्ञान का स्वरूप, लेकिन वो इसलिए हमें केवल ज्ञान का स्वरूप ख्याल में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि जो अनंत काल पहले होने वाली हैं वे पर्यायें भी वर्तमान बत जैसी वर्तमान की पर्याय दिखाई देती है उतनी ही स्पष्ट, उतनी ही साफ, उतनी ही निर्मल और एक एक रोम रोम सहित अपनी सारी विशेषताओं सहित वो हमें दिखाई देती है। कौन जीव कब मोक्ष जाएगा, चले गए वे तो खैर दिखाई दे ही रहे हैं, जाएगा वो भी उन्हें दिखाई दे रहे, तो कोई ऐसा भी तो होगा जो अनंत काल बाद जाएगा। भविष्य की पर्याय इतनी है ना, तो जाना तो भी बंद होगा नहीं कभी। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन की लंबी लंबी कहानियां सुना करके आप लोगों को घबरा देते हैं, हमारे करुणा नियोग वाले वो प्रवीण प्रवीण सुना रहा था कि मैंने सुनाया अब और सुनाऊंगा तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। वो अर्धपुद्गल परावर्तन तो उसकी अपेक्षा अनंतमा काल है, जिस अनंत के काल की बात ये अभी कर रहे हैं, हैं? अनंतमा भाग है ना। उस वक्त जो छह महीना और आठ समय में वो 600 जो आठ जीव जाएंगे देवी भगवान महावीर को अभी दिखाई दे रहे होंगे ना, क्यों? माने वो जीव भी कब मोक्ष जाएंगे, कैसे मोक्ष जाएंगे, उनकी कैसी स्थिति होगी, वो सारी बात अभी दिखाई देती है। इससे कितना कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है हमारी समझ में। जब भाई ऐसा लगता है ये तो बहुत गड़बड़ है, तुम साल भर का नक्की कर लो, उसके बाद का तो छोड़ो, हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ो, क्यों क्या छह महीना का नक्की कर लो, आज का व्याख्यान किसका होगा ये नक्की किया दबी भाई ने, ठीक है अब कल का तो छोड़ो हमें, कि पूरे शिविर का कर दिया कि साहब तो पहले ही लिखित गाजेट को देते हुए चिट्ठी डाल चुके कि आप इन तारीख से इस तारीख में पधारिये, आपके रोजाना दो व्याख्यान होंगे, नक्की कर चुके सब। ये तो बहुत गड़बड़ है। अरे तुझको ये गड़बड़ लगती है तो अनंत काल का जो ज्ञान में नक्की है वो भगवान तो तुझे सबसे ज्यादा गड़बड़िया लगेंगे, क्यों? मैं आप सबसे पूछता हूं कि ये व्यवस्थित व्यवस्था बढ़िया है कि खराब, कि कुछ भी नक्की नहीं होना, क्यों? अब ये कल का कल देखेंगे, कल का कल देखेंगे, ये बढ़िया है क्यों? गढ़ा कोटा में पंच कल्याण होगा वो फलानी तारीख से फलानी तारीख तक होगा, तो ये नक्की कर लिया सब ने, इतना पहले से, इतने पहले से नक्की करने में जिसको ऑब्जेक्शन आता है उसको इतने अनंत काल का नक्की है उसको एक कैसे स्वीकार हो? उत्तम से नहीं है? मैं भी बहुत सोच रहा हूं, मैंने लिखा भी है आजकल में कि हमको एकदम सहज भाव से जो वस्तु का स्वरूप है वो स्वीकृत क्यों नहीं होता क्या? या हम बचने की कोशिश करते रहते? उदाहरण के लिए कह रहा हूं मैं, उसकी पूरी चर्चा अभी नहीं करूंगा, और या फिर मरने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। हम तो फल देखना ले ली, फल देखना ले ली माने अब तो हम मर जाएंगे, जल्दी से जल्दी मर जाएंगे क्या, बस रोटी छोड़ी, दो दिन रोटी छोड़ी, दो दिन के बाद में दूध भी छोड़ देंगे, दही भी छोड़ देंगे, बस पानी रखेंगे और पानी भी छोड़ देंगे और बस खत्म, चलेंगे मोक्ष हो जाएगा। अरे मोक्ष नहीं होगा, आत्महत्या है ये, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं मैं आपको, शायद उदाहरण के तौर पर ही सही। क्या कहीं छोड़ दोगे? आज्ञा ये है कि जब तक आपकी मर्यादा के भीतर आप जिंदा रह सकते हैं तब तक आपको छोड़ने का अधिकार नहीं है। ये कोई पंडित नहीं बताएगा, कोई महाराज नहीं बताएंगे, ये मेरे पास ही मिलेगा आपको, सिद्ध करूंगा आगम से। बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ना बाकी है अभी मुझे, फिर मैं लिखूंगा, बहुत लिख भी दिया है। आपको अधिकार नहीं है। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि जो आहार हमारे शरीर को पोषण देता है, जब वो पोषण देना बंद कर दे तब उसे छोड़ देना। अब वो अभी भी आपको एक रोटी खाते तो थोड़ा सा ठीक रहता, रहता कि नहीं रहता? लेकिन आपने छोड़ दी तो मगर गलती की। जब वो शोषण करने लग जाए तब छोड़ने की आज्ञा है। बसंत भाई, मैं इतना बोल रहा हूं ना छाती ठोक के, तो मेरे पास आगम का बल है तब मैं कह रहा हूं, नहीं है। ये सहज भाव से मर रहे हो तो मर जाएं और नहीं मर रहे हो, जिंदा रहें तो जिंदा रहें, ये हमें स्वीकृत क्यों नहीं होता? जब तक नहीं ली तब तक पूरी कोशिश करके बचेंगे, नक्श अभक्श कोई विचार ही नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, और अब तो हमने संयोगना ले ली तो अब जल्दी छुटकारा हो जाए। बच्चन काय छुटकारा, कैसे छुटकारा लेना है? बहुत तर्क दिए हैं आचार्यों ने, पंडितों ने, पुराने पंडितों ने, पंडित गोमानी राम जी ने, पंडित सदाशिवदास जी ने, ये तर्क दिए हैं कि तू जो जल्दी मरने की बात करता है, तुझे मालूम है कि मर के कहां जाएगा? अभी तेरे पास कुछ ना कुछ तो है संयम, कुछ ना कुछ तो है ना, अपन लोगों में कुछ ना कुछ संयम है ना? कहते नहीं वो तो नहीं है, रंजन गुणस्थान नहीं है, फलाना नहीं है, कोई व्रत नहीं लिया है, हैं? क्यों नहीं? अष्टमूल गुण का तो त्याग है ना, सात विष्णों का तो त्याग है कि नहीं? तू जहां मर के जाएगा, जहां भी जाएगा, वहां तेरे को इससे खराब स्थिति मिलने वाली है। कैसी बात करते? स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा तो वहां 33-33 सागर तक तू संयम नहीं ले सकेगा, ऐसी देह मिलेगी। बोल, और जो संयम को ले सकता है, मरते मरते भी ले सकता है, ऐसी देह छूटेगी और ऐसी देह मिलेगी। बोल क्या? क्यों नहीं? हमें तो ये दिख दी, उसमें एक बीमारी नहीं होगी, इसमें ये नहीं क्या? नहीं छोड़ सकता। बहुत तर्क दिए सदाशिवदास जी ने, पंडित गोमानी राम जी ने, टोडरमल जी के सुपुत्र, बात करता हूं, मेरे चित्र में उनकी बहुत महिमा बड़ी है, जैसे मैंने उनको पढ़ा है। मतलब आप क्या मरने को की तरफ आप कैसे जा सकते हैं कि समाधि में रहना तो यही होता है और जितनी बड़ी आदत अच्छी फटाफट छोड़ता चला जाए क्यों 10 उपवास ठोक दे 20 उपवास ठोक दे। इसने लगा इस शरीर से शत्रुता नहीं करनी है। वो कालिदास की बात मैं नहीं कहता हूं देह माध्यम गर्भ धर्म साधनम, लेकिन जब तक ये तेरा मनुष्य शरीर इस शरीर से मतलब नहीं समझिए ना मनुष्य भव जो कोई अनुवृत्ति है मान लो सम्मादर्शन से दूसरों की बात नहीं तो वो कैसे इस बात को कर सकता है जो मुनि है वो इस बात को कैसे कर सकता है कि मैं जल्दी से छोड़ छाड़ करके जल्दी से मर जाऊं। जल्दी से मरेगा तो मां के पेट में भी जाएगा मनुष्य गति में भी जाएगा तो वहां असंयम होगा। मां के पेट में संयम नहीं होता सम्मा दर्शन सहित भी चला जाएगा तो सवाल तो यहां संयम का है। बहुत दृढ़ता से निषेध किया है। एक ही तर्क है कि तेरे वो तो यही तो कहते हैं चाहे मैं लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए। अब अभी तक तुझे मृत्यु आती थी तो तुझे विरोध करता था नहीं मैं माने नहीं दूंगा मृत्यु को हर कीमत पर बचाऊंगा। और अब जानू तेरे को क्या पागलपन सवार हुआ है क्या मैं मरने को तैयार जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी क्योंकि ये कहा था कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं। अब क्यों इंकार कर रहा है कि कमर में दर्द बहुत रहता है उठना बैठना में बहुत तकलीफ होती है लेकिन जो जिस भूमिका में तू है उस भूमिका का तेरे जो व्रत तूने लिए थे वो पल रहे कि नहीं बोल अब वो नहीं पल रहे थोड़ा नीचे उतर गया लेकिन बिल्कुल तू अवृत की भूमिका को क्यों स्वीकार करना चाहता है। मां के पेट में जाएगा तो अवृत्ति की हालत आएगी स्वर्ग में जाएगा तो अवृत्ति की आएगी तो तूने कुछ को खोया है तो कुछ तो बचाया क्या हेमचंद जी क्या कह रहा हूं मैं तूने महावृत खोए तो अनुवृत्त तो बचाए है? नहीं है तेरे को तू लाखों वर्षों तक अब जीने को तैयार नहीं है। हाँ ऐसी सड़ी गली देह में तो मैं जीने को तैयार नहीं हूं तो समाधि बहन की को स्वरूप तू नहीं समझता है। समाधि बहन में तो क्लियर यह है ना कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए। अभी हम अब भी मरने की बात कहेंगे तो अभी मीन मेघ निकालेगा लाखों वर्ष तक जीने को तो तू जो केवली के ज्ञान में झलका है देखो फिर मैं इस गाथा पे आ रहा हूं वैसा होगा वो तुझे स्वीकार है कि नहीं तूने तुझे तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो थोड़ा ऐसा थोड़ी तो गुंजाइश क्योंकि गुंजाइश उसमें होती नहीं ना किसी के भी लेकिन मैं महाराज से आज्ञा ले लूंगा मैं पंडित जी साहब आपके हाथ पैर जोड़ लूंगा आपसे आज्ञा ले लूंगा थोड़ा तो कर दो तो मेरे हाथ में नहीं है भाई अभी जिसको भी ध्यान से सुनना सर्वज्ञ का ये वचन माने वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा निरंतर वो परिणमित होएगा और अनंत काल तक का नक्की है और उसमें कोई भी फेरफार किसी भी कीमत पर संभव नहीं है ये स्वीकार है कि नहीं है। यदि है तो लंबी लंबी एप्लीकेशन लेके क्यों आता है एप्लीकेशन में ये भगवान के सामने जी ये स्तुतियां मुझे सचमुच बिल्कुल पसंद नहीं है। मां बड़े दादा मैं बहुत मना करता हूं इन बच्चों को भी लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी आ जाती जो मैं करता बाज है भगवान से प्रार्थना की अरे हम तो महावीर से की महावीर से क्योंकि अकेले महावीर भी अकर्ता बात है ना वे कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है ना। ये मांग काय थी, भगवान का भगत भिखारी नहीं होता, ऐसा मैंने लिखा था। भगवान से भी कुछ नहीं मांगते, अगर हम मगर हम थोड़ी कुछ पैसा मांग रहे, हम तो ये कह रहे कि भगवान जल्दी मर जाऊं, सारा परिग्रह में जल्दी छूट जाए। क्यों छूट जाए जल्दी, जब छूटना हो जब छूटे, हम तो ये स्वीकार करना है कि क्या करे, तब तो परिग्रह नहीं छूटे, हम ये भी भावना नहीं भा सकते। प्रदीप जी तू, हम कह रहे कि जो सहज भाव से तेरे अनंत भक्त पहले से नक्की है, तुझे वो क्यों स्वीकार नहीं। परमात्मा समझ जाए मैं क्या कह रहा हूं, दोनों ही तरफ हम अति करते हैं, तो कोई वृद्ध उपवास कोई कुछ नहीं करेगा, बस जब जैसे ताजे से खाएगा ताजो कुछ करेगा, और फिर एक कन्न में बैठेगा तो बराबर दो तीन चार पांच दस बीस वो खींच खींच के ले जाएगा आगे जहां तक खींच सकता है। कहां जरूरत है, टूटे मंजी ने कितना साफ लिखा, ऋषभ देव ने 6 महीने का उपवास किया, भगवान महावीर ने 23 तीर्थंकरों ने 2 दिन के किए, बोलो क्या करना। कि वो जरा बहुत पहलवान थे ना, बाहुबली के बाप थे, इसलिए उन्हें 6 महीने के कर लिए। अब सिंह किया पहलवान, ये क्या क्या करते। अरे ये भी वज्रभृषभ नारायण सनन के धारी थे, ये भी उनसे कम मजबूत नहीं थे, ये भी अतुल्य बल के धारी थे, ये भी उतने ही उपवास क्या बहुत शांतिपूर्वक कर सकते थे, तो क्यों नहीं किए। जितना होने थे उतने हो गए, उनके ज्ञान ने उन्हें सहज भाव से स्वीकार किया। हमारा क्या होता, देखिए कैसा आप कल महाराज आप आहार को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, तो महाराज को क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देना चाहिए। एक तो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है वो, क्या आपकी हर बात का जवाब दें, क्यों कहिए कि नहीं अभी नक्की नहीं है, क्यों अपने भाषा है, कई तरह की आमंत्रणी कई तरह की आज्ञापनी ऐसी भाषाएं होती हैं 10 प्रकार की, तो उसमें ऐसा बोला ना देखें क्या होता है। विद्यासागर जी महाराज बोलते हैं ना, उनसे कहो कि साहब हमारे जयपुर पधारो तो नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, आऊंगा ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे देखें क्या होता है। कहेंगे जब ये क्या हुआ, तो जवाब तो मिला नहीं, कि जवाब है नहीं, ऐसी ही भाषा बोलने का अधिकार है उन्हें, वो कह नहीं सकते, क्योंकि यदि वो आएंगे कहूंगा तो आज से ही उनके माथे पे बोझा हो गया, क्यों आज से ही मुझे विकल्प आ गया कि मैं गड़ाकोटा जाऊंगा, तो कहूंगा पीयूष वो गाड़ी तो देख कौन सी गाड़ी जाती है, कितने बजे पहुंचती है, कैसा है, टिकट मिलेगा क्या, ये बीमारी लगती है ना। वो महाराज को भी वही आएगा नहीं, तो क्या करे, क्या 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 चाहते हैं वो, कि मैं क्यों माथे पे बोझा रखूं, जब सुबह 10 बजे में आहार का टाइम होगा सुनना, और मुझे आहार को निकलने का विकल्प आएगा तो निकल जाऊंगा, और मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। एक मिनट पहले मैं आपको कोई वचन नहीं दे सकता, क्योंकि नक्की नहीं है इसलिए नहीं, नक्की है इसलिए। क्या कर क्योंकि अभी हमने नक्की भी, तुम्हारी नक्की करने की बात नहीं है ये, भगवान महावीर से पूछते खमोशरण में कोई ये फला महाराज इस दिन आहार को उठाएंगे कि नहीं उठे, तो वे उस दिन बता देते कि उठाएंगे, अंतराय हो जाएगा कि मेरा आहार मिल जाएगा। नक्की तो है, जो नक्की है तो फिर ये क्या करें, इन्हें पता नहीं है, अब ये क्या करें बोलो आप। वो नक्की है और इन्हें पता नहीं है। यदि ये विकल्प करते हैं कि मैं कल का डिसीजन कर लेता हूं सुनना, तो वो उस नक्की के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे, नक्की के विरुद्ध विचार कर रहे। उन्हें ऐसी क्या गलती है, हमें तो बताने की जरूरत है। साहब आप नहीं आओ तो हम किसी दूसरे को बुलाएं, ऐसा नहीं आपको बताना तो पड़ेगा, क्यों हो गया नहीं है वो, इसके लिए बाध्य नहीं है क्या नहीं? एक मिनट में एक कहने, आपने तो कहा था कि हम आएंगे है, यदि हम नहीं कह दें इसे तो बढ़िया नहीं कह दें अच्छा है ना, तो और झंझट खड़ी हो जाएगी। फिर यदि हम पहुंच गए तो दूसरे पंडित जी कहेंगे कि तुम तो नहीं आने वाले थे ना, अभी विकल्प आ गया तो आ गए, नहीं नहीं इनने कहा कि बाप पंडित जी नहीं आ रहे इसलिए आपकी बहुत जरूरत है, तो इसलिए हम तो 25 काम छोड़ के आए हैं, तो हमारे रोजीना प्रवचन होना चाहिए। हमारे होंगे कि तुम्हारे, क्यों हमारे होंगे कि तुम्हारे, क्यों कि ठीक है तुम्हारे करो तुम्हारे कर लो। अरे यही तो दिक्कत है कि हम करेंगे तो 25 आदमी अभी हालांकि टोकेंगे कि पंडित जी के क्यों नहीं पंडित जी। अरे हम कितने चक्रों में हैं समझ गए ना, महाराज इन चक्रों में नहीं रहते कभी भी, ये किसी को हां कहते ही नहीं, उन्हें ऐसी भाषा बोलने की आज्ञा ही नहीं है आगम में। बसंत भाई वो यही बोल सकते हैं कि देखें क्या होता है, इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि भगवान के सर्वज्ञ ने देख लिया है और हमारे को अभी देखने में आ नहीं रहा है क्या कि क्या होना है, इसलिए हमारे तो जब वर्तमान होगा उसका तब वो हमारे जानने में आएगा क्या होता है क्या, तब हम देखेंगे। ये सहज ज्ञाता दृष्टा भाव है क्यों पीयूष, उसने कहा था ना तेरे से कि तुम सहज ज्ञाता दृष्टा भाव को नहीं समझता है? हम किसी विकल्प में उलझे ही नहीं, जो हो रहा वो देखे, हमारे ज्ञान में ये सामर्थ होती सर्वज्ञ जैसी कि क्या होगा तो वो देख के बता देते, और नक्की करना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये तो विकल्प है और विकल्प किसी का आज तक पूरा हुआ नहीं है, क्यों कि अब वो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध विकल्प कर रहा है तो उसकी क्या हालत होगी। एक एक पर्याय नक्की है, ये हमारी श्रद्धा का विषय बन जाए और जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आए, वो परिवर्तन दुनिया को नहीं दिखेगा, दुनिया को क्या पता, वो उसके अंदर उसे दिखेगा ना, क्यों क्या उसे विकल्प आए तो महामंत्र दिया ना कौन सा सहज ज्ञाता दृष्टा भाव रहे तो जान ले कि मुझे विकल्प आ रहा है, क्यों उसे भी सहज भाव से जान ले कि मुंह से निकल जाए तो सहज भाव से जान ले कि मेरे मुंह से निकल गई, क्यों क्या होगा। मेरे कहने का मतलब से वस्तु का जो स्वरूप है उसे सहज भाव से हमें स्वीकृत होना चाहिए। उस लेखना पर भी मैं उदाहरण देता हूं बस कदम कि तुमको जो होना है हम दे छूट रही हम तैयार हैं, नहीं छूट रही तैयार हैं। देखो सच्ची बात कहूं ना तो एक वाक्य में ढूंगो मायके जाओगी हां जाएंगे, कि ढूंगे ससरे जाओगी कि हां जाएंगे, इसका नाम दे अंदर हूं हम इस जगत में सबसे मूर्ख महिला को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वो तो बेचारी कुछ समझती नहीं है, उससे तो जो कह दो तो हां कह देगी, यही कर रहे ना ढूंगो बाहर के जाओगी क्या साथ से जाओगी क्या, वो तो ना करना जानती ही नहीं है। अरे वो सबसे बुद्धिमान महिला है जिसे हम सबसे मूर्ख समझते हैं, क्या करें है? देखो जीवादि समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति जीवादि द्रव्य, समझे ना, मान जीव पुरुष धर्म धर्म आकाश काल, फिर अनंत जीव, और एक एक जीव में अनंत अनंत गुण, और उनकी एक एक समय की एक एक पर्याय, अब कितना काम हो गया बोलो, और सब नक्की है। ये तो वस्तु के स्वरूप से नक्की है, ये नक्की किसी ने किया नहीं है। क्या किसी ने किया नहीं है नक्की, नक्की है अपने भगवान ने, तो सिर्फ जाना है, और वो जो जानने वाले भगवान हैं उनको उसमें रंच मात्र कहीं परिवर्तन करने का रंच मात्र विकल्प नहीं है। विकल्प हो तो वे भगवान नहीं बने, माने उनके ज्ञान में ये आ गया कि ये मेरे माँ बाप भाई बहन और इस भव के जी अगले भव के सब आ गए ना, अब इसमें इतने मोक्ष जाने वाले हैं, इतने लेट मोक्ष जाने वाले हैं, वो इतने नहीं जाने वाले अभद्ध हैं, क्यों तो थोड़ा सा विकल्प तो आता होगा कि ये भव्य बन जाए कोई तरकीब से तो ठीक ठाक है, नहीं आता आना नहीं चाहिए, क्यों नहीं? ये पहली शर्त है कि पहले ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा हो तो सारी दुनिया तुम्हारे ज्ञान का गेय बने। क्या क्यों विदय जी, समझ में आई ना, क्यों कि तुमको भेदभाव करने का विकल्प खड़ा हो, कर तो सकते ही नहीं, लेकिन तुम उस विकल्प के भी करता नहीं तो तुम्हें केवल ज्ञान होगा ही नहीं, ये विकल्प पहले खत्म होगा, श्रद्धा की दृष्टि से तो चौथे गुणस्थान में खत्म होगा, फिर चारित्रिक मोह की वजह से श्रद्धा के विरुद्ध भी विकल्प आते रहते हैं, हैं? ऐसे कोई मतलब नहीं है, विकल्प में तीव्रता मंदता सब होती रहती है, लेकिन जब वो श्रद्धा के लेवल पर जाके विचार करता है तो वो सब बस ऐसे, इस अवस्था में ऐसा ही होता है, इस अवस्था में ऐसा ही होता है। गणेश प्रसाद बरनी और भागीरथ बरनी, नाम सुने होंगे ना, दोनों जने पढ़ते थे बनारस में। ये बरनी जानते हैं, बरनी शब्द कहां से आया है, ये कादंबरी में है, बरनी माने ब्रह्मचारी, वो ब्राह्मणों के वैष्णव संस्कृति में बरनी ब्रह्मचारी को कहते हैं, तो ये बनारस में पढ़ते थे तो इसलिए वो बरनी ने अपने आप को लिखा, बरनी माने ब्रह्मचारी, जैसे मांगे चुल्लक फलाने चुल्लक मनोहरलाल बरनी, बरनी माने ब्रह्मचारी, अभी जो ब्रह्मचारी लिखते हैं ना वो बरनी, और कोई अर्थ नहीं है। तो एक मौलवी व्याख्यान दे रहा था कुर्बानी पे कि तुम इन काफिरों को मार डालो तो भी तुम्हें जन्नत मिलेगी, और इनके हाथ से मर जाओ तो भी जन्नत मिलेगी, इसलिए घबराओ नहीं, क्यों हम मारने जाएंगे तो वो हमें मार डालेगा तो भी जन्नत, जन्नत माने स्वर्ग, जहन्नुम माने नरक, उन्हें तो दो ही स्थिति में, मारने में भी स्वर्ग और मरने में भी स्वर्ग, खूब उत्तेजनात्मक भाषण दे रहा था। तो गणेश प्रसाद बरनी से भागीरथ बरनी ने कहा कैसा लगा व्याख्यान, देख रहे थे ना दो अपने से, तो बोले बहुत बढ़िया, तो एकदम गुस्सा में क्या बकते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये कितनी हिंसक हिंसा का पोषण कर रहा है और तुमको बढ़िया लगा, बोले हाँ बढ़िया लगा, क्यों कि इतनी तीव्र कसाई के उदय में इससे बढ़िया और कौन सा भाषण हो सकता है। ये उनने गणेश प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, बोलो भाई जो भी है उसका आगे पीछे कारण है ना सब विद्वान, उससे तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, और तुम्हें यहां पर क्या भाषण सुनने आए थे, अहिंसा का भाषण सुनने आए थे, आप समझ गए ना, तो ये मेरे कहने का अर्थ है कि हमको वो वस्तु का स्वरूप स्वीकार होना चाहिए। जब दर्शन मोहक चला जाता है और चारित्र मोहक विद्यमान रहता है अपनी पूरी क्षमता के साथ, वो अनंतानंदी तो नहीं होती, उसके संबंध के साथ चली जाती मिथ्यात्व तो। और जो अप्रत्याखाना वर्ण का तीव्रतम उदय रहे, ऐसी स्थिति में जो उग्रता और वो होगी, वो होगी, आप उसे रोक नहीं सकेंगे, और श्रद्धा की दृष्टि से आप उसके ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। बोलो, बाहुबली ने किसे भरत हारे तो चक्र चलाया है, सायत्र मोह के उदय में ऐसा हुआ, और उसी वक्त श्रद्धा जो है उसके भी ज्ञाता दृष्टा रहे कि ऐसा ऐसा हो गया, ये जान लिया कि उससे ऐसा आया, फिर उससे निकल गया बेचारे, चक्र चल गया, ऐसा हो गया, हो गया, अब चला गया। बोलते ना, आप सुनेंगे ना, वो दोनों का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। ये गाथाएं ऐसे ही निकाल दो कहां हमने पढ़ ली तो ऐसी ये उसका मजा नहीं है। देखो, तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, किनकी, देखो जीवादि समस्त द्रव्य जातियों की, पर्यायों की, उत्पत्ति की, ये मर्यादा है। समस्त द्रव्यों की, समस्त जाति माने जितने प्रकार के द्रव्य, जीव अजीव सब, उन द्रव्यों की, उनकी पर्यायों की, उत्पत्ति की मर्यादा, तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, कितनी है कि तीन काल के जितने समय है, उत्पन्न होंगे नष्ट होंगे, उत्पन्न होंगे नष्ट होंगे, कितने कि तीन काल के जितने समय है। मान ऐसा नहीं होगा कि कोई काल आएगा तो इसकी जो उत्पन्न होने और नष्ट होने की जो बात है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जितना काम था वो पूरा हो गया। होने से उनकी क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा, अब क्या कहते हैं, क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा, यानी प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक पर्याय जिस समय प्रति समय हो रही है, वो क्रम से हो रही ना, नंबर बाई नंबर, वो तपती हुई, तपती हुई माने एकदम कहते हैं माने होती हुई स्वरूप संपदा, वो उसका स्वरूप है प्रत्येक द्रव्य का, और वो उसकी संपत्ति है, विपत्ति नहीं है। क्या प्रत्येक द्रव्य की स्वरूप संपदा है, वो स्वरूप संपदा बाली विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जितनी पर्याय हैं, एक पर्याय विद्यमान और अनंत पर्याय भूतकाल की अविद्यमान और भविष्यकाल की अविद्यमान। यदि हम भूतकाल और भविष्यकाल की पर्यायों के बिली नहीं जाने तो उनका ज्ञान सिर्फ एक समय का रह जाएगा। बोल लो है, सोचो आप क्या दुर्दशा होगी भगवान की। अभी तो हम कहते वर्तमान का जानते हैं, तो हमने वर्तमान माने क्या कि इसी शताब्दी में 100 वर्ष का वर्तमान बना लिया, इसी मनुष्य पर्याय में तो हमने 80 वर्ष का वर्तमान बना लिया, ये नकली है। इसमें से 79 वर्ष तो भूतकाल में चले गए और बाकी के अभी भविष्य काल में है, एक वर्ष का रह जाना एक झटके में, फिर इसी माह तो 11 महीना और गए, फिर आज तो बाकी के दिन और गए, क्यों, इसी समय तो सारे भूतकाल में चले गए और वे भविष्य काल में, अब वे होके नष्ट हो गई और वे अभी भई नहीं, और वे एक समय की पर्याय को जानेंगे केवली भगवान, तो सबसे ज्यादा नहीं जानने वाले हो जाएंगे, जो सबसे ज्यादा टॉप पे बैठे हैं जानने वालों में, क्यों, अपन तो बिल्कुल जानेंगे ही नहीं, अपन तो खत्म ही हो जाएंगे, क्यों कि अपन को तो एक चीज जो सामने आती है वो असंख्य समय बाद हमारा उपयोग पे आता है। क्या आपने देखा भैंस का स्वभाव कैसा होता है, यदि दीवाल के पास आप खड़े हो और वो वहां से निकले तो उसे पता नहीं चलता है कि मेरी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये फंस जाएगा। अब जब आप फंस जाओ और एकदम धमसने लग जाओ तो वहां डंडा मारो बहुत जोर जोर से भैंस को, जब तक 10 डंडे नहीं मारोगे तब तक तो उसे पता नहीं चलता कि कोई मुझे मार रहा है। वो 10 डंडे बाद क्या क्या हुआ, क्यों क्या मार रहा, क्यों मार रहा कुछ पता नहीं, पर वो और ज्यादा घसीट देगी। वो तुमको कोई बैर विरोध नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि तुम इसलिए डंडा मार रहे हो कि मैं वहां से हट जाऊं, तो वो दब दब रहा है वो पते मेरा पैर तुम्हारे पैर पर पड़ गया, अब तुम मुझे धक्का मार रहे, डंडा मार रहे, अरे क्यों मार रहा, क्या मार रहा, क्या मार रहा, अरे तुम मेरे पैर पर से पैर हटा, तो वो हमारी समझ में ही नहीं आएगा पैर पर से पैर हटाने के लिए तुम हमें मार रहे, कितने ही मारते रहो हम पैर तो और मजबूती से जमाएंगे, समझ गए ना, तो क्या हालत हो जाएगी। यानी भूतकाल की पर्यायें वे जाने और भविष्य की पर्यायों को वे जाने, ऐसा नहीं मानने पर कितना बड़ा संकट खड़ा होगा, क्या हमारे तुम्हारा भी। अभी अब अपन को अपना ज्ञान है, इसको जो भी अपना ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, इसमें भी भूत और भविष्य को अपन जानते कि नहीं जानते हैं, है? क्यों आज क्या शुक्रवार है, जो शनिवार जो भी समझ लो, तो कल शुक्रवार था ये तो नक्की है, और कल संडे होगा, इतना तो अपना ज्ञान है ना, इतना ही कैसे है और भी है, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद फिर मंगलवार, मंगल के बाद बुधवार, बुधवार सब है, इतना ज्ञान तो अपन को है ना, ये सब खत्म गायब, क्योंकि भूतकाल का तो आप जानेंगे नहीं, भविष्य का जानेंगे नहीं है? क्यों, जब मैं जवान था बच्चा था तो मेरी मूछें नहीं थी, ये ज्ञान आपको है कि नहीं है, क्यों तो जो बाद में आ गई ये भी ज्ञान है कि नहीं, पहले पहले काली थी और अब सफेद हो गई, ये ज्ञान है कि नहीं है, फिर भूतकाल भविष्य काल का अपने ही तो बैठे हैं ना त्रिकालज्ञ, पूरे त्रिकालज्ञ नहीं होंगे, वह हमने और उनमें फर्क क्या है कि वे पूरे त्रिकालज्ञ हैं और हम अधूरे त्रिकालज्ञ हैं, बस कहना वे प्रत्यक्ष त्रिकालज्ञ हैं और हम परोक्ष ज्ञान के त्रिकालज्ञ हैं, है हमारा ज्ञान भी तो स्मृति ज्ञान काम करता, प्रतिभा ज्ञान काम करता, अनुमान ज्ञान काम करता है, आगम ज्ञान काम करता है, पिछली बातें अगली बातें हम जानते कि नहीं जानते हैं, देखो कई बातें तो ऐसी हैं जो अपन जानते हैं वो तो वे नहीं जानते, क्या मैं आपका क्या क्या बात कर रहे हैं आप, मैं कहता हूं कि हमें मालूम है ना कि ये देवो पुनीत हथियार होते हैं ना, ये शस्त्र चक्रवर्ती के पास, वे अपने परिवार पे नहीं चलते, सबको मालूम है कि नहीं, एक भी यहां आदमी ऐसा नहीं है जिसे मालूम नहीं है, बस अकेले भरत चक्रवर्ती को मालूम नहीं था, मालूम था तो चलाया क्या, नहीं था मालूम, ऋषभ देव को आहार की व्यवस्था नहीं हो रही है, हैं? हमें मालूम है सब, अब सौधर्मेंद्र को मालूम नहीं था क्या करें, वे अपने अपने में मंगन थे, भरत चक्रवर्ती अपने में मंगन थे, जो जो था वो अपने अपने काम में लग रहा था, क्यों फिर बेचारे आहार को निकलते चक्कर काट कूट के आ जाते, वो ना क्या ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये त्रिकालज्ञता की बात पहले हमारे चित्त को होना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए कि तीन काल की बातें जानी जा सकती हैं, पहले तो ये हटे कि भूतकाल की हम कैसे जानेंगे, वो तो नष्ट ही होगी, भविष्य की तो अभी हुई ही नहीं है, हम कैसे जानेंगे, भविष्य की तो हुई ही नहीं है कैसे जानेंगे, आप नहीं जानते कि ये हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है, जब ये 25 वर्ष का होगा तो उसकी मूछें हो जाएंगी, कोई लड़की पैदा हुई है तो ये इतने वर्ष की होगी तो इसके जो स्त्री उचित विकास वो विकसित हो जाएगा, किसे पता नहीं, भविष्य का भी हम जानते हैं ना पक्का, और 99% तो वो बात सच्ची निकलती कि नहीं निकलती बोलो, 1-8% हम परोक्ष की वजह से छोड़ देते हैं, होता ही है ना ऐसा कि 1-8 ऐसा हो जाए कि बच्चा 25 वर्ष का हो जाए और उसकी मूछें आए ही नहीं, लेकिन अरबों में से 1-8 बाकी तो नहीं होंगे ना, तो किसी आदमी को यही तर्क दिया है, ऐसा पूरी भविष्य की और पूरी भूत की प्रजाएं हैं वो जाने, ऐसा हो सकता है? क्यों अब नहीं कह सकते हैं कि अभी तो सोमवार के बाद ही मंगलवार आता है, अब भविष्य के भगवान जाने क्यों है? ऐसा नहीं, अपन अनंत काल तक की अपन कितना पक्का भरोसा है कि अनंत काल बाद सोमवार के बाद ही मंगलवार आएगा, पक्का भरोसा है ना? क्या कोई कुछ भी कहीं कहीं बाद में गड़बड़ हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज तक के भूतकाल में जितने भी सोमवार आए हैं ये सब संदेह की बात ही आए ना, अब इसकी गड़बड़ हो जाएगी तो हो जाएगी, भूतकाल की तो गड़बड़ नहीं होगी। हमारे ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है हमको इसका पता नहीं। मैं आपसे एक मोटा सा प्रश्न करता हूं, यद्यपि मैं बहुत पहले कई दफे कर चुका हूं और जो बहुतों को याद भी होगा, लेकिन आप सब अपने मन में सोचना कि आपकी जो आंख की ताकत है वो कितने दूर तक का आप देख सकते हैं। वो चक्रवर्ती का मैं नहीं पूछ रहा हूं जो तुम्हें प्रवीण ने बताया होगा कि वो सब भरत वो राजमहल पर बैठ के और सूरज में के जो भगवान जिन मूर्तियां हैं अकीर्तन चैत्यालय उनके दर्शन कर लेते हैं तो उसमें कितने में कितना का गुणा करो और भाग करो, फिर 999 जितने भी कितने मील तक का भरत चक्रवर्ती आंख में देखने की ताकत थी। छोड़ो भगत चक्रवर्ती में इतनी थी कि वो अयोध्या में अपने 96वें महल में बैठकर सूरज जब उगता था जहां वो नील पर्वत था कहां उगता था उतनी दूरी जो है उतने दूर का देख लेते थे। वो दूरी कितनी है वो शास्त्र में लिखी है। तो अब अपनी अपनी आंख का तो सबको पता है ना, बोलो कितनी दूर तक का देख सकते हो? क्यों आप 100 गज दूर का देख सकते हो? बोलो अब सोचो जरा सरलता, देख सकते हो? देख सकते हो तो पढ़ो, ये 100 गज दूर थोड़ी है तुमसे, नहीं देख सकते तो गलती हो गई ना, हम 100 गज नहीं देख सकते तो इसे 1 गज देख सकते हैं। क्यों 1 गज इतना देख सकते हैं? क्यों यही बात सही है ना? तो फिर आप 100-200 ही गज देख सकते हैं तो सूरज और चांद तो आपको दिखते नहीं होंगे, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तो वे 100-200 ही गज होंगे। अरे तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम कितनी दूर का देख सकते हो। सूरज और चांद लाखों मील दूर है ना, और वे हमें दिखते हैं तो हमारी आंख में कितना दूर तक का देखने की ताकत है हमारी कल्पना में भी नहीं आता। आप बोल ही नहीं सकते हैं कि मैं 1,00,000 मील दूर का देख सकती हूं, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़े बोलने की। तो फिर क्या है, फिर ये क्यों नहीं पाई, किताब क्यों बताई? अरे भाई एक एक शर्त लगी है उसमें, उजेला हो, इतने बड़े अक्षर हों, पास में हों, प्रकाश, वो प्रकाशमय है वो पदार्थ तो इतने दूर से देख सकते हैं, और वो काला होता अंधकारमय तो हमें नहीं देख सकते थे। कितनी कितनी शर्त हैं, उन शर्तों के साथ हम देखते हैं, लेकिन हम कितने दूर तक का देख सकते हैं, कितने पास तक का देख सकते हैं, वो हमारा ही ज्ञान का हमें अंदाजा नहीं है, तो केवली के ज्ञान का अंदाजा कैसे हो? वो हमारी कल्पना के बाहर है, कल्पना करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। देखो विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जितनी पर्यायें हैं, देखो विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जितनी पर्यायें हैं लिखा थी नहीं लिखा कि होंगी नहीं लिखा, तो विद्यमान अविद्यमान भी जितनी पर्यायें हैं, ठीक है है ना, हैं वे सब तात्कालिक पर्यायों की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर भी, क्या वे तो बहुत मिली हुई हैं एकदम, और हमें बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही है केवली भगवान को। क्या वो चावल पकाए ना तो वे गीले हो गए थोड़े, तो एकदम मिल गए, क्यों? तो वे जितने मिल गए तो एक हो गए कि जितने चावल हमने पकाए थे 1000 चावल हमने डाले थे, जैसे कोई गिन के डालता नहीं है, लेकिन मानो तो 1000 चावल हैं, ये आपके ख्याल में नहीं है। कांगे अत्यंत मिश्रित होने पर भी वे पर्याय हैं, ज्ञान गुण की एक चल रही, श्रद्धा गुण की एक चल रही, चायत गुण की एक चल रही, फिर एक ही आत्मा में सब हैं, फिर कितनी मिश्रित हैं, फिर काल द्रव्य की उसी क्षण में हमारी पर्याय, फिर तुम्हारी पर्याय, तो कितना मामला गड़बड़ है। तो कितनी ही मिला दो लेकिन उनको जानने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या अपन ने चाय बनाई, उसमें काली मिर्च डाल दी और मसाला डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, जो भी डाल दिया, ये तो कह नहीं सकता हूं कि तुमने अदरक डाल दिया, वो तो अच्छा नहीं है। क्यों? अब जो तुम्हें वो डाल दिया तो तुम उसका स्वाद तक लेते हो, तुम्हें पता पड़ता है ना इसमें अदरक है, ज्यादा हो गया, कम है कि नहीं है, ये काली मिर्च है नहीं है, पता लग जाता या नहीं लग जाता? और भगवान को भी लग जाता होगा कि इनकी चाय में 3 काली मिर्चें डली कि 4, उन्हें पता होता होगा, बता सकते कि नहीं? कि दादा अभी क्या बात करते हैं, ऐसी फालतू बात है। अरे भाई वो सब जानते हैं। क्यों? तो उसमें फालतू और गैर फालतू सब जानते हैं, तुम्हारा दिमाग कुछ नहीं जानते इस तरफ जाता है। जानते सुनो प्रभु, क्या कहा? हमको ऐसा कहेंगे कि तुम्हें फालतू बातें भी जानते हैं, तुम्हारा दिमाग सब जानते हैं, ये स्वीकार नहीं है। कुछ बातें तुम्हें फालतू दिखती हैं, उनको नहीं जानना चाहिए, और जो जो काम की हैं उन्हें जानना चाहिए। तो तुमको सर्वज्ञता की परिभाषा समझ में नहीं है। सर्वज्ञता का स्वरूप बता रहे, तुम एक तरह सोचो तो सर्वज्ञ का मतलब क्या है? कि तुम्हारा हमें नहीं सोचना, तुम्हारे सोचने के चक्कर में हम पड़ते हैं तो हम हिल नहीं सकते, और भगवान ने देखा होगा तो ये ले। क्या? तो तुमको तो भगवान की गुलामी देखने लगती है, ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें। सच्ची बात तो है ईमानदारी की, हमें भगवान तो ऐसा चाहिए जो हमारा काम करे, नहीं तो हम गणेश जी के चले जाएंगे। हमारे बहुत जैनी गणेश जी के मंदिर जाते हैं, ये जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, जहां काम होता है वहां जाते हैं। अब तुम्हारे भगवान के पास आगे क्या करें, कुछ करते ही नहीं है, है? वो हम कहां कहां से कहां गए कि साहब वो नवग्रह विधान उनके यहां चलता था, तो जब वो नवग्रह विधान में सब छोड़ छोड़ के वहां चले जाते हैं, क्या करें? महाराज आए हैं, उनने विधान शुरू किया है, 1000 आदमी बैठ गए जोड़े से, क्यों? क्यों फलाना नवग्रह विधान था, अपन तो नवग्रह नहीं कर सकते। अरे कोई रास्ता निकालो पंडित जी, कहां नवदेव विधान, नवदेव। अबे नवग्रह के जो गिनाते थे ना, अब भी हम गिना नहीं सकते, वो शनि फलाना उनके नाम आता ना देवता में, बुध शनि ये वो, अब हम क्या करेंगे? नो, अब हमारे यहां तो परिवृष्टि तो पांच ही है, करें क्या? कि पंडित जी तुम किस काम के? निकाल, नो निकालो, नो निकालो, देखो एक अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, तो एक जैन धर्म, एक जैन आगम, एक जैन मंदिर और एक जैन प्रतिमा, नौ हो गए, नौ देवता हो गए, हो गए ना, फटाफट पूजन शुरू हो गई, बराबर हमारे भगवान भी दौड़ करने लग गए। अभी जरा विचार तो करो कि जो मंदिर में भगवान विराजमान है ना, एक तो भी और एक उनकी मूर्ति नौ देवताओं में, तो भगवान भी अलग और उनकी मूर्ति अलग देवता, और जिस मंदिर में वो मूर्ति विराजमान है वो अलग देवता। अब एक देवता के चरणों में हम माथा झुका रहे, वो मूर्ति वाले में भगवान के में झुका ही रहे, और एक देवता की छाती पे पैर रख रहे, वो मंदिर नाम का जो देवता है ना, क्यों उत्तम सिंह जी छाती पे पैर रख रहे कि नहीं? नहीं, मंदिर में जाओगे कैसे कैसे, एक पैर बाहर रख जाना। चल रहा सब नो देवता क्या किया ना, तो मैं पांच से काम नहीं चलता था, नो कुछ कर देंगे, यानी हम तो कि उनके पास ना जाएं, पर हमारे ये समस्या खड़ी हो गई, इसके लिए हम सब कुछ कर सकते, हम सब भूल सकते हैं, तो जो उनके यहां होता है वो हम अपने यहां बता देना शुरू कर दें। हमारा गायत्री मंत्र, हमारा नमो का मंत्र उससे बढ़िया है। गायत्री मंत्र तुम्हारा क्या कहता है, एक रुपए का 100 देता है, हमारा एक रुपए का 1000 देगा, बोलो देना देना तो है ही नहीं कुछ, जाना तो कहीं है, क्या नहीं कहना है, फिर तक विधान कराएंगे, कोर दूर कर देंगे। एक उदाहरण मिल गया हमको, वो शास्त्र में लिखा है, कितना पुराना है, करोड़ों अरबों वर्ष पुराना होगा। कब के थे श्रीपाल, कौन से भगवान के समय के थे, बोलो, वंश पूछ वो कितना काल हो गया। अब एक ही उदाहरण से अपना काम चल रहा है, ये जगत माने जा रहा, किए जा रहा है, चल रही है अपने यहां बात। अरे हमें कोई हम इतनी सी बात कहें तो हमारे गला पकड़ने तैयार। अरे वस्तु का स्वरूप क्या है, एक एक बात नक्की है और उसमें किसी कीमत पर कोई चेंज हो नहीं सकता, ये बात हमारे गले उतरना चाहिए हैं, तो उसमें ये बातें कैसे आ सकती हैं, जो इन बातों को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, इस बात को हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।